Ya da como چنه کار شروع کرتے ہیں، ہم پرائم پہ ختم بھی کریں انشاء اللہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے حق جیسے کہ واقعی ہے، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں دکھلا دیجئے باطل جیسا کہ وہ واقعی ہے، اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے. اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. ربنا زدنا علما، پیج نمبر 85 پر، پیج نمبر 85، تسہیل بہشتی زیور، کتاب الترغیب و ترہیب میں ہم کتاب الترغیب ابھی پڑھ رہے ہیں. اس میں یتیم بچوں کی پرورش کرنا آخری موضوع تھا جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا. آج مسلمان کی حاجت پوری کرنا. حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کوئی اس کی. تو حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں. تو کام تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا کام بنا سکیں. تو ہم پھر کرتے کیا ہیں؟ کسی کے کام میں ہوتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ کسی کی مدد کریں. تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو پھر کام کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں کہ ہم واقعی کچھ کر بھی سکیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی کریمی کی انتہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن صرف ہماری نیت اور ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس نیت اور ارادے کے ہی بیسس پر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بھی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اسی کو کہتے ہیں خیر خواہی. تو الدین النصیحہ والی حدیث بھی ہم نے زیادہ طالبین کے بالکل شروع میں پڑھی تھی کہ دین سراسر خیر خواہی ہے. تو جب دین میں، یعنی جب انسان کے دین میں خیر خواہی کا جذبہ موجود ہوتا ہے تو وہی صحیح معنوں میں دین کہلانے کے قابل ہوتا ہے. تو خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کی ضرورت کو دیکھا اور پورا کرنے کی اپنے اندر استطاعت پائی، یا کوئی ایسا آئیڈیا ذہن کے اندر آیا کہ جس سے کہ کسی کی حاجت پوری ہو سکے، تو ارادہ کر لیا کہ میں اس کی حاجت پوری کرنے میں اس کی مدد کروں گا. تو اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں بھی پوری کروا دیتے ہیں اس طریقے سے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کم از کم دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کے لیے بطور سبب کے استعمال فرما لے، ٹھیک ہے. یعنی یہ استعمال کرنا، اس کی دل میں طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے. دعا کے لیے طلب ہونی ضروری ہے. جب طلب ہوگی تبھی دل سے دعا نکلے گی، اور جب دعا نکلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے استعمال ہونے کا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مانگنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بلکہ بہت ہی فائدہ مند دعا ہے، کیونکہ اس واسطے سے، اس ذریعے سے پھر ہماری بھی مشکلات سالو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. جن مشکلات کے پیچھے ہم خود بھاگتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کہ ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں لگ جاتی ہیں، تو کتنا آسان طریقہ ہے ان مشکلات کو سالو کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل سالو فرما. یہ تو ہم دعا کرتے ہی رہتے ہیں، ہر کوئی دعا کرتا ہے، رائٹ. ہر ایمان والا جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل سالو کرنے کی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کی دعا کریں کہ اللہ مجھے دوسروں کی مشکلات سالو کرنے کے لیے استعمال فرما لے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی پختگی کبھی اس کے اندر گویا کہ ڈیمونسٹریشن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وعدہ فرمایا نا، تو ہم اس وعدے کے بیسس پر دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہ بھائی جب ہم کسی کے کام میں لگ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو بھی بنا دیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے حیا اور بے حیائی، ٹھیک ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم یعنی حیا، ٹھیک ہے، شرم و حیا جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، और बेशर्मी बदखुई की बात है और बदखुई दोजख में ले जाती है। यानी ये तो जैसे कि हम पहले हदीस भी पढ़ चुके हैं कि अल हया शोबतुम मिन अल ईमान, कि हया ईमान के शोबों में से एक शोबा है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर अहम बात जो है वो सबसे पहले तो यह है कि हया को समझना। ठीक है, कि हया होती क्या चीज़ है। तो हया एक ऐसी चीज़ है कि बेसिकली इसका ताल्लुक जो है ना वो इंसान की दिल के साथ है। ठीक है, क्योंकि ये एक फीलिंग है। ठीक है, ये एक एहसास है, फीलिंग है, और इसका ताल्लुक और फीलिंग्स जो होती हैं वो इंसान के दिल में होती हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स इंसान के दिल में होती हैं। ठीक है, तो सॉरी डिस्ट्रैक्शन सी अभी। अच्छा, तो फीलिंग जो होती है वो इंसान के दिल में होती है, और दिल के बारे में हम पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं कि दिल की कैफियत जो होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है ना वो ये कैफियत कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, हम जो हैं वो दिल की से मुताल्लिक सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते, बाकी किसी कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कोई बताएगा कि हम वो कौन सी एक चीज़ है? ठीक है, जिसका ताल्लुक इंसान के दिल के साथ होता है और उसको हम कंट्रोल भी करते हैं। कोई बता सकता है? वो कौन सी एक चीज़ है कि जिसका ताल्लुक दिल के साथ है और हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं या करते हैं? ठीक है, नजर, ब्रेन, अल्लाह की याद। असल में नहीं, नजर और ब्रेन वगैरह तो खैर नहीं है। इवन अल्लाह की याद भी जो है ना, ये भी हम हकीकत तो यह है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वो क्या चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक ही चीज़ है बस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात भी हुई थी। वसवसे तो हम बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो 100% हमारे कंट्रोल से बाहर है, मतलब इसके बारे में तो कोई शक और शुबा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो शैतान डालता है ना। फीलिंग्स तो हमने कह दिया ना कि हम फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते, फीलिंग्स अल्लाह के हाथ में होती हैं। हम क्या कंट्रोल करते हैं? ठीक है, हमने एक बिल्कुल शुरू में पढ़ा था ज़ादो तालिबीन की पहली हदीस, उसके अंदर एक चीज पढ़ी थी ना कि ये जो इन्नमल आमाल बिन नियात, जी नियत, बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त हमने ये बात पढ़ी थी कि नियत जो है वो दिल का फेल है, नियत दिल का फेल है। ठीक है, यानी बाकी जो फेल हम करते हैं ना, काम जो हम करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे काम जो होते हैं वो हम हाथों से करते हैं, पैरों से करते हैं, आंखों से करते हैं, कानों से करते हैं। ठीक है, हत्ता कि अपने दिमाग से भी बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नियत है ना, तो नियत के बारे में मशायख ने फरमाया कि ये दिल की है, दिल का अमल होता है। ठीक है, तो दिल से ना हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी को हम इख्तियार भी कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इसकी अथॉरिटी दी है कि हम इख्तियार करें कि जी हमें सीधे रास्ते पे चलना है कि हमें बुरे रास्ते पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है कि बुरे रास्ते पे चलना है। यही इख्तियार है जो कि हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास कुछ इख्तियार नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमें वो मिसाल याद रखनी चाहिए जो कि मशायख देते हैं बात समझाने के लिए, कि एक आदमी खड़ा था और उसके सीधे हाथ पर फलों का, फूलों का टोकरा रखा हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा, खुशबूदार, खूबसूरत टोकरा रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन उस टोकरे के का वजन बहुत ज्यादा था, उसके अंदर सिर्फ फूल नहीं थे, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फल भी थे। अब फलों का वजन आप जानते हैं कि ज्यादा होता है। ठीक है, तो टोकरा था बहुत अच्छा लेकिन बहुत वजनी था। ठीक है, और दूसरी साइड पर भी एक टोकरा रखा हुआ था, वो जो था बहुत ही गंदी चीजों से भरा हुआ था, गंदे फूल भी थे सड़े हुए उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर सड़े हुए फल भी थे। तो इस वजह से ना वो जो टोकरा था वो भी बहुत भारी था। ठीक है, अब ये जो आदमी है ना उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इन दोनों में से किसी एक टोकरे को भी उठा सके। ठीक है, तो एक पहलवान साहब आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें कौन सा वाला टोकरा चाहिए, ठीक है, मैं वो उठाकर ना तुम्हारे सर पे रख दूंगा, फिर तुम इसको लेकर के चले जाना। ठीक है, तुम उसको खुद नहीं उठा सकते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें उठा के सर के ऊपर रख लूंगा। ठीक है, अब ये शख्स जो होता है वो चॉइस करता है कि मुझे ये वाला टोकरा चाहिए कि वो वाला टोकरा चाहिए। ठीक है, उठाना इसके बस में नहीं है। ठीक है, तो उठाना तो पहलवान के बस में। ठीक है, तो पहलवान जो है ना वो क्या करता है, इसकी चॉइस की बेसिस पर टोकरा उठा के इसके सर पे रख देता है। ठीक है, तो अब इसका जो ये जो अमल है ना कि टोकरा इसके सर पे रखा हुआ है, ये अमल इसने किया नहीं है। ठीक है, अमल तो पहलवान ने किया है। ठीक है, लेकिन इस अमल का कसूरवार कौन ठहराया जाएगा? ठीक है, किसको इसका ब्लेम दिया जाएगा? पहलवान को नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि पहलवान ने ना इसको फोर्स नहीं किया था। ठीक है, कोई फोर्स नहीं किया था, पहलवान ने सिर्फ इसकी चॉइस पूछी थी। ठीक है, और इसने अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस इस्तेमाल करी है। ठीक है, तो यही मामला हमारा और अल्लाह ताला का भी है। ये जो टोकरे हैं ना, ये टोकरे अमल है, और अमल जो है ना ये बहुत भारी चीज होती है। हम अमल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हम अमल करने के काबिल नहीं है। ठीक है ना, तो हम, और हकीकत ये है कि ना तो हम अच्छे अमल करने के काबिल हैं और ना ही हम बुरे अमल करने के काबिल हैं। ठीक है, यानी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिर्फ इख्तियार है, और इख्तियार के बाद जो है ना सारा मामला फिर अल्लाह ताला के हाथ में होता है। ठीक है, इसी को सूरह वल्लैल के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह से फरमाया कि फअम्मा मन अअता वत्तका वसद्दका बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा। ठीक है, कि जिसने अता किया, ठीक है, यानी गरीब को, जरूरतमंदों को अता किया और तकवा इख्तियार किया, वसद्दका बिलहुस्ना और अच्छी बात की तस्दीक करी। ठीक है, यानी ये तीन काम किए जिसने, ओके, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, फसनुयस्सिरुहु लिलयुसरा, बस हम उसके लिए आसान कर देंगे, बस हम उसके लिए आसानी कर देंगे, बल्कि मजे की बात यही है, हम उसके लिए आसानी कर देंगे, हम उसको आसान कर देंगे जन्नत के लिए। ठीक है, अलयुसरा का मतलब जन्नत होता है। ठीक है, तो क्या मतलब कि हम उसकी तबीयत के अंदर ना फिर नेकी की ख्वाहिश पैदा कर देंगे, हम उसकी तबीयत को ऐसा बना देंगे कि वो फिर नेक अमाल किया करेगा। ठीक है, नेक अमाल किया करेगा, उसकी तबीयत मायल हो जाएगी नेक अमाल की तरफ, ख्वाहिश पैदा हो जाएगी उसके दिल के अंदर नेक अमाल की। ठीक है, तो उसकी कॉज क्या बनती है, सद्दका बिल हुस्ना असल में बनती है इसकी कॉज। ठीक है, तो बेसिकली जो हम नेक अमाल करते हैं वो अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक देते हैं, और हमारे इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ यानी नीयत होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जमीनी बात, बात असल में ये चल रही थी कि शर्म और हया जो है ये भी एक फीलिंग है, और ये फीलिंग भी जो है ना ये यानी दिल के अंदर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा मामला किया है कि अल्लाह ताला ने जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया ना, ठीक है, हमें जो हमारी जो रूह बनाई है, हमारा दिल बनाया है, तो हम बेसिकली दो अजनास में तकसीम है। ठीक है, दो जिंसें हैं हमारे अंदर, एक जिंस कहलाती है मुजक्कर की जिंस और एक जिंस कहलाती है मुअन्नस की जिंस। ठीक है, तो जो जाहिरी शर्म और हया होती है ना, ठीक है, जिसको कि हम आम तौर पर मुआशरती तौर पर समझते हैं कि जी शर्म और हया का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये जाहिरी शर्म और हया जो होती है जिसके अंदर यानी अपने आप को छुपाना, अपनी यानी सतर की हिफाजत करना, ठीक है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो मादा है ना शर्म और हया की फीलिंग का मादा, ये अल्लाह ताला ने औरत के अंदर रखा है ज्यादा। ठीक है, औरत के अंदर ज्यादा रखा है, और मर्द के अंदर भी रखा है, ये नहीं है कि मर्द से आ रही होता है। ठीक है, लेकिन मर्द के अंदर ना इस मादे को प्रिडोमिनेंट नहीं रखा, ठीक है, गालिब नहीं रखा, बल्कि मगलूब रखा। ठीक है, औरत के अंदर इसको गालिब रखा, और इसको जो है ना वो औरत की एक जिसको कहते हैं ना डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। ठीक है, और इसको औरत के अंदर बहुत पसंद किया। ठीक है, और मर्द के अंदर भी इसको रखा, लेकिन मर्द के अंदर इसको गालिब नहीं रखा, मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने दूसरी फीलिंग रखी जिसको कहते हैं गैरत की फीलिंग। ठीक है, गैरत ये वाली फीलिंग जो है ना वो मर्द के अंदर रखी और इसको मर्द के लिए डिफाइनिंग फीचर बनाया। ठीक है। तो इस तरीके से जो शर्म हया होती है, इससे से जो शर्म हया जिसको समझा जाता है हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर जिसको समझा जाता है ना, तो ये जो शर्म हया है ये औरत की डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। और इसका इसका फिर अल्लाह ताला ने ईमान के साथ एक ताल्लुक भी बनाया कि ये ईमान का शोभा है, ठीक है। अगर ये ना रहे, अच्छा ईमान का शोभा है, जाहिर है औरत के लिए भी ईमान का शोभा है, मर्द के लिए भी ईमान का शोभा है, इसलिए कि ईमान तो दोनों में होता है ना, मर्द में भी होता है ईमान और औरत में भी होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये शर्म हया जो है वो एक जिमनी चीज नहीं है, एक नफली चीज नहीं है, एक जो है वो कम इम्पोर्टेंस वाली चीज नहीं है, बल्कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि एक तो ये कि ईमान का शोभा है जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर इक्वली सिग्निफिकेंट होता है, और दूसरा ये कि औरत के अंदर इसको डिफाइनिंग फीचर भी बनाया, ठीक है। इसकी दलील के तौर पर मशायख जो हैं वो कुरान पाक की दो आयात बयान करते हैं, ठीक है। एक आयत जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने जिना का तذکرہ किया है, ठीक है, जिना की सजा का तذکرہ, ठीक है। और उसमें अल्लाह ताला ने जो अंदाज इस्तेमाल किया है ना, ऑर्डर जो इस्तेमाल किया है वो इस तरीके से है कि अज़ानियतु वज़ानी, ठीक है, फज़लिदु, कि जो जानिया औरत है और जो जानी मर्द है तो उनको कोड़े लगाओ, ठीक है। औरत का तस्करा पहले, ठीक है। इसी तरह की एक और भी जुर्म है, ठीक है, वो जुर्म क्या है, चोरी का जुर्म, ठीक है। चोरी के जुर्म को जहां पे तस्करा किया ना कि उसकी जो सजा है, ठीक है, तो उसको उसको किन अल्फाज से कुरान के अंदर तस्करा किया, असारिकु वसारिकतु, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, ठीक है। फक्तउ अइदियहुमा, तुम इनके दोनों हाथों को काट दो, ठीक है, तो हाथ काटने की सजा है चोरी करने के ऊपर। लेकिन चूंकि कुरान के अंदर जो अल्फाज आते हैं ना, उन अल्फाज की सिग्निफिकेंस भी होती है और वो जिस ऑर्डर में आते हैं उसकी भी सिग्निफिकेंस होती है, तो इस वजह से मुशायख ने फरमाया कि जो जिना वाला जुर्म है इसका खास ताल्लुक शर्म हया के साथ है, ठीक है, क्योंकि इंसान अपनी शर्म को को कॉम्प्रोमाइज करके फिर जिना का फेल का मुर्तकिब होता है। तो वहां पर अल्लाह ताला ने जानिया का तस्करा पहले किया और जानी मर्द का तस्करा बाद में किया, ठीक है। लेकिन जहां पर चोरी का तस्करा आया तो चोरी का ताल्लुक जो है वो इस तरह की शर्म हया के साथ नहीं है, जैसे कि यानी अपने बदन को छुपाने वाली जो शर्म हया होती है, ठीक है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो गैरत के साथ है, ठीक है, क्योंकि मर्द की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है वो यानी मेहनत मजदूरी के जरिए से या जो भी तरीके होते हैं हलाल माल कमाने के, उन तरीकों से उसको माल कमाना है, ठीक है। किसी दूसरे की मिल्कियत को गसब कर लेना जो कि चोरी की डेफिनेशन होती है, ठीक है, किसी दूसरे की कमाई में माल को या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को उससे छीन लेना, ये उसकी गैरत के खिलाफ है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना अल्लाह ने फिर चोरी करने वाले मर्द का तस्करा पहले फरमाया और चोरी करने वाली औरत का तस्करा बाद में फरमाया, ठीक है। तो हया वाला जो मामला है वो औरत के साथ ज्यादा है और गैरत वाला मामला मर्द के साथ ज्यादा है, ये नहीं कि है नहीं औरत के अंदर गैरत या मर्द के अंदर शर्म हया है नहीं, ठीक है। अच्छा एक और बात करके आगे बढ़ेंगे, वो ये कि ये जो फीलिंग है ना, ये एक ऐसी चीज होती है इंसान के अंदर, ठीक है, जो कि अगर रुखसत हो जाए ना उसके अंदर से तो फिर इसका आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, यानी समझने कि फिर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इसका वापस आना, ठीक है। अगर हया रुखसत हो गई ना तो फिर हत्ता के एक हदीस के अल्फाज का मफहूम क्या है कि इजा फारक तकल हया, गालिबन इस तरह के अल्फाज है ना कि अगर तुझसे हया जुदा हो गई, फामल माशता गालबन, तो फिर तू कर जो चाहे, तू जो तेरा जी चाहे ना पर तू कर उसके बाद, ठीक है, इसलिए कि अब तेरे अंदर हया रही नहीं है, ठीक है। अब यानी जैसे कहता है ना, जो मर्जी आए तुम करो, ठीक है, अब आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, राइट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से खिताब फरमाया कि अगर तुमसे हया रुखसत हो गई ना, अब तुम किसी काम के नहीं रहे हो, ठीक है। तो हया जो है ना ये रुखसत हो जाने वाली चीज होती है अगर इसका ख्याल ना रखा जाए, ठीक है। तो इस वजह से आज के दौर के अंदर जो शैतान ने अपने जाल फैलाए हैं ना, ठीक है, अपने हरबे जो फैलाए हैं खास तौर पर, ठीक ठीक है, उनमें जो है ना ये हया को रुखसत करने का उसने बहुत इंतजाम किया है, ठीक है, कि इंसानों के अंदर से ना हया चली जाए, ठीक, क्योंकि उसको पता है कि हया चली गई ना तो अब ये इनके पास वापस नहीं आने वाली है। अब ये जो है ना इनके जो अमाल होंगे ना वो फिर उनका वो मामला ही नहीं रहेगा, वैसी खूबसूरती इसके अंदर नहीं रहेगी जैसे कि हया के साथ होती है, ठीक है। तो औरतों के हया हया रुखसत करने के लिए तरह तरह के जो है वो तरीके बनाए हैं, तरह तरह के जो है, ठीक है, ये जो घर से निकाल करके फिर उसके बाद औरत को दुनिया के सामने लाया जाता है ना, तो जब एक दफा वो अपने आप को एक्सपोज कर देती है ना गैर के सामने, ठीक है, चाहे सिर्फ चेहरे के लेवल पे एक्सपोज करे, चाहे जो है वो अपने बदन के लेवल पे एक्सपोज करे, ठीक है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट ना एक्सपोज करने का, इस ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप को एक्सपोज कर देना जो होता है ना दूसरे के सामने, ये इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए अगर आपके अंदर हया थी ना पहले, तो आपको अच्छा खासा एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, ये एक रुकावट होती है हया एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप इस हया वाले ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो बस आप कर गए, अब आप दूसरी साइड पे चले गए, अब वापस आना जो है ना वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये एक दफा एक्सपोज करवा देता है और उसके बाद फिर इसका काम हो जाता है, फिर बंदा फिर इसके अंदर आगे ही बढ़ता रहता है, या ये कि अगर आगे ना भी बढ़े ना तो भी अब ये वापस पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। तो हया की हिफाजत जो होती है ना फिर बचपन में ही करनी पड़ जाती है, ठीक है, और बचपन में अगर इसकी हिफाजत ना की जाए ना तो फिर बाद में बड़े होने के बाद दीनदार तो बन जाते हैं, ठीक है, दीनदार बन करके जो है वो शरीयत के बहुत सारे तकाजों को तो पूरा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हया जो चली गई ना फिर वो वापस नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से वालदैन की ये जिम्मेदारी है, और वालदैन को इस बात की अहमियत को समझना चाहिए कि अगर उनके पास अभी भी मौका है अपनी औलाद की हया की हिफाजत करने का, ठीक है ना, तो उसकी हिफाजत कर लें, ठीक है ना, कुछ कर लें, उनको समझाएं, उनके साथ बात करें, हया के टॉपिक को खोलें, ठीक है, बात करें इस टॉपिक के ऊपर और समझाएं कि बेटा हम जो आपको स्कूल भेज रहे हैं तो हम आपको किस वजह से भेज रहे हैं, हम आपको अपनी हया कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं भेज रहे, ठीक है, कि आप वहां जाकर के ना बेहया किस्म के लोगों को जो है वो आइडियलाइज करना शुरू कर दें और उन जैसा बनने की कोशिश करना शुरू कर दें, ठीक है, हम इस मकसद से आपको नहीं भेज रहे स्कूल, ठीक है। तो आप बेशक जा रहे हैं वहां पे तालीम हासिल करके आए, और उस तालीम के अंदर भी बहुत ख्याल रखना होता है कि वो जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो बुक्स लिखी गई हैं, ये जो स्टोरी बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है ना, ये तकरीबन सारी की सारी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की लिखी गई हैं, ठीक है, या ऐसे मुसलमानों की लिखी हुई होती हैं जो कि नॉन मुस्लिम से कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना इन किताबों के अंदर अल्फाज ही इस तरीके से रखे जाते हैं, ऐसे मैसेजेस रखे जाते हैं कि जिनको पढ़ करके भी खाली हयात अच्छी खासी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत भी नहीं होती है, सिर्फ इनके अंदर छुपे हुए मैसेजेस, और फिर जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं, ग्रेड्स बढ़ते हैं, तो फिर वो तस्वीरें भी लगाना शुरू कर देते हैं, फिर जो है वो आजकल जैसे कि आपने सुना ही है वेस्ट के अंदर तो ये यानी पुरानी बात है, लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान जो है राइट, उसके अंदर ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं कि जहां पर के सेक्स एजुकेशन जो है वो थर्ड ग्रेड की किताबों के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है, इससे उस बच्चों को क्या फायदा होगा, ठीक है, कोई फिजिकल फायदा उसको नहीं होता ना उसको, वैसे तो कोई बड़े होने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं होता इससे, ठीक है, यानी जो हमारी पिछली सारी की सारी नस्लें जो हैं वो जवान हुई हैं और नेकी की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, तो वो इसके बगैर उन्होंने गुजारी है, ऐसा कोई है नहीं है, जो ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि जी चूंकि पता नहीं होता ना इस वजह से ऐसा होता है, अल्लाह के बंदे तुमने कभी दीन समझा नहीं, दीन का तुम्हें कोई अलिफ बे नहीं पता है, ठीक है, तो तुम जो है ना फिर अपनी बुकराती झाड़ते हो कि जी जब तक सेक्स एजुकेशन नहीं होगी उस वक्त तक बच्चा जो है वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस वक्त तक बच्चा जो है वो यानी शादीशुदा जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं होता, तो ये सब तो इनकी खराफात हैं, बकवास हैं इनकी सारी की सारी, ठीक है। असल में ये करना क्या चाहते हैं, असल में जो है ना ये हया को रुखसत करना चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, इनको और कोई हमदर्दी नहीं है, किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं है किसी के साथ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये हया के ऊपर डाका डालने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो अपने पहली बात तो हमें ये ख्याल रखना है कि अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, किस स्कूल में भेज रहे हैं, उस स्कूल के अंदर क्या होता है, ठीक है, उस स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, किस किस्म के टीचर्स हैं, ये सारी चीजें पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मजबूरी है किसी ऐसे स्कूल में भेजना है जहां पर कि आप इस्लामिक एजुकेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे भेज भी रहे हैं ना जहां पर कि वो नाम का इस्लामिक स्कूल है, ठीक है, इवन देन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि इस्लामिक स्कूल होने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज ही जो है वहां पर शरीयत के मुताबिक होगी, ठीक है। कभी तो नाम होता है खाली और अंदर तफसीलात में जाए तो पता लगता है वहां कोई खास फर्क नहीं है इस स्कूल के अंदर और बाकी स्कूल के अंदर, ठीक है। तो हया की हिफाजत, ये सारी की सारी डिस्कशन करी क्यों है, एक तो हया को समझाने के लिए कि हया चीज क्या होती है, और दूसरी ये कि इसकी हिफाजत करी करी जाएगी तब ये महफूज रहेगी, अगर नहीं करी जाएगी ना तो आज तो हर चीज ही दुनिया के अंदर इसको रुख्सत करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अब ये रुख्सत हो गई तो अब आप बड़े होने के बाद माशाल्लाह जितने बड़े मौलवी बन जाए, मौलविया बन जाए, आलम आलिम बन जाए कि आलिमा बन जाए, उससे फिर ये हया वापस नहीं आने वाली है, ठीक है। कोई सवाल है या कोई एतराज है तो प्लीज फील फ्री। खुश खुल्की और बद खुल्की, ठीक है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश खुल्की यानी अच्छे इखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देती है जैसे पानी नमक के पत्थर को पिघला देता है, और बदखुल्की इबादत को इस तरह खराब कर देती है कि जिस तरह सिरका शहद को खराब कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जहन में आ गई थी, बस क्विकली बता के आगे चलूंगा कि हया अल्लाह ताला को कितनी पसंद है, ठीक है। इसके लिए इतनी ही दलील काफी होनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम और शुएब अलैहि सलाम की बेटियों का वाकया कुरान के अंदर जिक्र करते हैं ना, तो उस जिक्र के अंदर जब फरमाते हैं कि उनकी बेटी जो है ना वो मूसा अलैहि सलाम के पास आई उनको घर बुलाने के लिए, ठीक है, तो इतना बात करते ना भी काफी था, वाकया पूरा हो जाता, ठीक है। लेकिन उनके चल के आने के अंदाज के बारे में फरमाया, ठीक है, तमशी इलास्तहया, ठीक है, कि वो हया के साथ चलते हुए आई मूसा अलैहि सलाम के पास, ठीक है। अब ये हया के साथ चलते हुए आई, अल्लाह ताला बाकायदा इसका तस्करा फरमा रहे, ठीक है। हालांकि वो चलते हुए आई थी और जैसे वो चलती होगी वैसे चल के आई, ठीक है, लेकिन उसका ये जो हया के साथ चल के आना है ना, ये अल्लाह ताला को इतना पसंद था कि खास तौर पर इसका तस्करा किया एक्स्ट्रा अल्फाज इस्तेमाल करके, ठीक है। और कुरान जो है उसके अंदर एक एक लफ्ज कीमती है, ये बहुत ही इजमाल है जिसके अंदर, आपको पीछे बताया था ना कि कुरान के अंदर इजमाल है, तफसील नहीं है, ठीक है, तो इजमाल से खूबसूरती आती है। तो अल्लाह ताला उसके अंदर दो तीन वर्ड्स ऐड करके जो है ना वो इजमाल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं हाँ मखा में, ठीक है, बल्कि इसकी जरूरत थी और ये इजमाल का हिस्सा है, ये जो अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा वर्ड्स उसके अंदर इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला को हया से इंतहाई मोहब्बत है। खुशखुल्की भी उन्हीं चीजों में से है कि जिनसे अल्लाह ताला को मोहब्बत है, और ये इंसान के गुनाहों को पिघला देती है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन तमसील से इसको समझाया कि नमक का पानी, नमक का पत्थर पानी में पिघल जाता है, घुल जाता है, और बदखल्की का उसका ऑपोजिट मामला होता है कि सिरका या एलवा, बल्कि हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं उसके तर्जुमा एलवा जो है वो हमने ज्यादा देखा, इलवा एक बहुत ही कड़वी चीज होती है जो कि अगर शहद में डाल दी जाए तो इवन शहद भी खराब हो जाता है, उसके अंदर भी कड़वाहट आ जाती है। तो यानी इंसानों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आना, ठीक है, तो अगर हम ईमान के साथ ये काम करेंगे और अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत के साथ करेंगे, जिसका मतलब असल में क्या होता है कि आखिरत के अजर की नीयत के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को इस अच्छे इखलाक अच्छे यानी बिहेवियर की वजह से गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और इसके बरअक्स अगर दूसरा मामला करेंगे तो अगरचे कि इबादत वगैरह खूब कर रहे होंगे लेकिन फिर उनका वो असर पैदा नहीं होगा हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कि नेक यानी इबादत का असर पैदा होता है या होना चाहिए, यानी बरकत और हिफाजत और इस तरह की चीज़ें जो इबादत का एक कॉन्सिक्वेंस होती हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस से फिर हम महरूम रहेंगे। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब में मुझको ज़्यादा प्यारा और आखिरत में सबसे ज़्यादा मुझसे नज़दीक वो शख्स है कि जिसके इखलाक अच्छे हों, और तुम सब में ज़्यादा मुझको बुरा लगने वाला और आखिरत में सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहने वाला वो शख्स है कि जिसके इखलाक बुरे हों, ठीक है। तो अब अगर हमारे साथ ही प्रॉब्लम है बुरे अखलाक वाली तो अगेन अल्लाह ताला से मांगे, खूब मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस प्रॉब्लम के के ऊपर ओवरकम करने में मेरी मदद फरमा दीजिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला से मांगेंगे तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब भी अता फरमा देंगे कि जिनके ज़रिए से कि हम इस प्रॉब्लम पर काबू पा सकें। और अगर अच्छे अखलाक हैं तो फिर उन अच्छे अखलाक को आखिरत के अजर की नीयत के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, ये बात जानते हुए कि सिर्फ अच्छे अखलाक हो जाना भी इनफ नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक जो है वो भी आखिरत के अजर की नीयत के साथ करेंगे तो फिर हमें बहुत फ़ायदा होगा। नरमी और सख्त मिजाजी। अच्छा, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला मेहरबान हैं और नरमी को पसंद करते हैं और नरमी पर ऐसी नेमतें देते हैं जो सख्ती पर नहीं देते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो मोमिन के लिए हमेशा नरमी ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिविटी ही होता है। जैसे कि पहला हमने डिस्कस किया कि तरगीब, यह हमेशा पहले आता है। ठीक है, और तरहीब जिसके अंदर सख्ती वाला मामला होता है, ठीक है, सजा वाला मामला होता है, सजा की बात की जाती है, हत्ता के जंग व जदल लड़ाई की नौबत आ जाती है। ठीक है, कि जब घी सीधे हाथों नहीं निकलता तो फिर उल्टे यानी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो फिर टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा जो है वो सीधी उंगलियों वाला मामला पहले। ठीक है, और वो ऑप्शंस जो है जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं या ये कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि फिर दूसरा बंदा जो है वो नरमी को अब्यूज करना शुरू हो जाता है, तब फिर सख्ती की बारी आती है। ठीक है, तो नरमी बहरहाल बेहतर है और नरमी से बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं। और फिर जो है वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस के अंदर, जो एक्सेप्शन हमेशा दुनिया के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर सख्ती को रखना चाहिए। ठीक है, तो बात सख्ती से शुरू नहीं करनी चाहिए बल्कि नरमी से शुरू करनी चाहिए। जैसे कि सख्ती जो है वो फिर उसी का दूसरा नाम जो है वो गुस्सा होता है, तो गुस्से के बारे में भी सोचना फरमाया कि वो हराम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई शरीयत की ऐसी खिलाफ वर्जी वाला मामला हो जाए, ठीक है, अपने मातहतों से, ठीक है, यानी जिनके जो के हमारे रईयत में है, तो फिर उनके साथ जो है वो शरीयत की खातिर, अल्लाह की खातिर खाली, ठीक है, अपने नफ्स की खातिर नहीं बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर और उनकी अपनी भलाई की खातिर, ठीक है, यानी उनकी अपनी भलाई है ना, कि अगर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं बात, ठीक है, तो इसको तो शफकत कहते हैं ना, कि उनको उस नुकसान से बचा लिया जाए कि जिस नुकसान में वो अपने आप को मुब्तला करेंगे अगर वो बाज नहीं आएंगे तो। ठीक है, तो इसी को यानी नज़ीर या इसी को नज़र भी कहते हैं, ना नून ज़ाल रा। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बशीर के साथ साथ नज़ीर बना करके भेजा गया। तो नज़ीर वही होता है कि जो कि अगले बंदे को उसके नुकसान से बचाने के लिए उसको फिर रोकता है, डराता है, ठीक है, धमकाता भी है अगर उसको धमकाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है वो बशीर वाला मामला करना होता है। ठीक है, फिर दूसरी हदीस लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो सारी भलाइयों से महरूम हो गया। ठीक है, जैसे कि एक हदीस मुबारका में आता है कि एक सहाबी आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त और प्यार वाला मामला कर रहे हैं, उनको बोसा दे रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे तो पता नहीं 9 बच्चे हैं या कितने बच्चे हैं, उन्होंने फरमाया, और मैंने तो कभी किसी को बोसा नहीं दिया। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू नरमी से महरूम कर दिया गया है तो अब मैं क्या करूँ उसका, यानी कि एक बड़े नागवारी का इजहार किया कि अब बच्चों को कभी बोसा नहीं दिया, बच्चों के साथ प्यार वाला मामला नहीं किया, तो नरमी से महरूम हो गया ना ये बंदा, तो इसका मतलब है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस सिफत को भी फिर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करने के अंदर सबसे पहली कोशिश जो होती है वो दुआ की शक्ल में होती है। अल्लाह ताला से मांगे कि भाई मेरे अंदर नरमी नहीं है, तो अल्लाह मेरी सख्ती को दूर फरमा दे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्शियस रहने की कोशिश करें इंसान, और कॉन्शियसली जो है वो फिर क्या करते हैं कि ये जो फीलिंग्स वाली, ये भी नरमी भी एक फीलिंग ही है ना और सख्ती भी एक फीलिंग ही है। ठीक है, तो फीलिंग्स जो होती हैं पैदा तो अल्लाह ने करनी होती हैं, तो हमने क्या करना होता है, फिर हमने अल्लाह से दुआ करनी होती है। ठीक है, और हमने जो है ना फिर आर्टिफिशियली उसको जो है ना गोया के इंड्यूस करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, इंडक्शन कहते हैं ना, आर्टिफिशियली इंडक्शन, आर्टिफिशियल इंडक्शन, इंड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है ना कभी। ठीक है, तो उसके लिए फिर जंप स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक दूसरी गाड़ी भी चाहिए होती है, राइट, तो जिसका इंजन स्टार्टेड होता है। ठीक है, तो इस वजह से ना जब हम ऐसे कुलूब की सोहबत में रहते हैं कि जिनके कुलूब जो है उनके अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, ठीक है, तो उनके कुलूब से फिर ना हमारे हमारा कल्ब भी जो है ना वो जम स्टार्ट हो जाता है। जम स्टार्ट भी कैसे होता है, अल्लाह ताला ही करते हैं जम स्टार्ट, लेकिन इस सोहबत में रहने की बरकत ये होती है, अल्लाह ताला को चूंकि पसंद है नेक सोहबत अख्तियार करना, तो अल्लाह ताला फिर जम स्टार्ट करवा देते हैं उनके कुलूब के जरिए से, ठीक है। और या ये कि फिर हम वैसे ही अगर कोई ऐसी सोहबत में ऐसा नहीं है तो फिर हम अपने ऊपर फोर्स करें किसी इस तरीके से कि गोया कि नरमी को फोर्स कर रहे हैं, अगरचे के है नहीं नरमी, ठीक है, लेकिन इस फोर्स करने की मेहनत को देख करके अल्लाह ताला फिर मेहरबानी फरमा देते हैं, ठीक है। मुसलमान का उज्र कबूल कर लेना, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के सामने उज्र पेश करे और वो उसके उज्र को कबूल ना करे तो ऐसा शख्स मेरे पास हौज़े कौसर पर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो उन्होंने तर्जुमे में गा लगा दिया है, ठीक है, यानी खबर दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और हमने जो सुना मशाइख से इस हदीस के मजमून को, तो उनकी जुबान से तो हमने ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अमर के सीगे में, ठीक है, यानी हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा शख्स मेरे पास हौज़े कौसर पर ना आए, ठीक है, यानी हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। तो जुमले दो किस्म के होते हैं ना, एक होता है जुमला इंशाइया, दूसरा होता है जुमला खबरिया, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जुमला खबरिया लिखा कि गोया खबर दे रहे हैं कि वो शख्स मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो हमने सुना मशाइख से उसके अंदर वो खबर नहीं दे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हम हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा शख्स मेरे पास ना आए, ठीक है। तशरीह यानी अगर कोई किसी किस्म की गलती कर बैठे और फिर वो माफी मांगे तो माफ कर देना चाहिए, ठीक है, माफ नहीं करेंगे तो फिर क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है वो बंदा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बाइस बनेगी ये बात। कम बोलना, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स चुप रहता है वो बहुत सी आफतों से बचा रहता है, ठीक है, मन समता नजा, या तो इसी हदीस की अरबी ये है या ये कि इसी मजमून वाली जो अरबी है वो इस तरह से भी, जो खामोश रहा वो निजात पा गया, ठीक है। तो चूंकि जुबान जो होती है वो इंसान को मुसीबतों में मुब्तला करने में सबसे ज्यादा आगे होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है, तो ज्यादा बोलने से फिर होता है कि शैतान जो है ना फिर जबान को फिसलाता है, यानी ऐसे का ऐसी बातें भी बुलवा देते हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से यानी खामोश रहना ज्यादा बेहतर है, अगर बात करने की जरूरत पड़े, जैसे कि किसी का काम ही है अभी बात करना, ठीक है, वो जैसे सेल्समैन होते हैं, ठीक है, चाहे दुनियावी सेल्समैन हो चाहे दीनी सेल्समैन हो, ठीक है, तो उनको तो बोलना होता है, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला से बहुत ही डरते रहना चाहिए और दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह मेरा तो काम ही है बोलना, तो आप मुझे बचा लिया करें, अगर कोई गलती या तो गलती हो ही ना मुझसे, लेकिन अगर गलती हो भी जाए तो फिर उस गलती का मुदावा फरमा दिया करें। जैसे कि आप मशाइख की दुआ में सुनते होंगे ना, पहली बात क्या मांगते हैं, ठीक है, पहले तो गुनाहों से माफी मांगने के बाद क्या कहते हैं, ए अल्लाह ऐबों की पर्दापोशी फरमा, ठीक है, इसलिए कि उनका काम ही होता है बोलना, और जुबान जब इतनी ज्यादा चलेगी ना तो ऐब जो है वो निकलेंगे उसके अंदर, कोई गलत कुछ ना कुछ गलती होगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला से पहली दुआ क्या करते हैं, ए अल्लाह ऐबों की पर्दापोशी फरमा, ठीक है, अल्लाह आप पर्दा डाल दें इसके ऊपर, वरना मेरे अंदर तो ऐब है ही, और फिर जुबान जो है वो तो मेरे ऐबों को खोल के लोगों के सामने भी लेकर के आ जाती है, ठीक है। तो आप ही हैं जो कि आंखों पर पर्दा डाल सकते हैं और कानों पर पर्दा डाल सकते हैं, वरना तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ठीक है ना। ऐसे अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए फिर, अगर जॉब डिस्क्रिप्शन ही हो बोलना। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र के सिवा और बातें ज्यादा मत किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें करना दिल को सख्त कर देता है, और लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से दूर वो शख्स है कि जिसका दिल सख्त हो, ठीक है। तो दिल सख्त हो ये भी एक मेटाफोर है, ठीक है, यानी एक मजाजी शक्ल है सख्ती की, ठीक है, मिजाज की सख्ती जिसको कहते हैं, और यानी कि दिल के अंदर सख्ती वाली फीलिंग आ जाए तो इसी को मुहावरे में कहते हैं दिल सख्त हो गया, ठीक है। तो इसका हल फिर क्या है, अगेन वही है कि यानी अल्लाह ताला से दुआ करना और अल्लाह ताला को दिल में याद करना, ठीक है। अब ये दिल में याद करना होता है तो फिर अब इसका तरीका जो है वो बाकायदा सीखना पड़ता है, वरना जिक्र जो है ना वो तो हम जुबान से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो दिल में याद करने का मतलब फिर क्या होता है, फिर ये हर मरतबा जो बताते हैं तो वही मतलब मतलब होता है इसका, ठीक है, दिल में अल्लाह ताला को याद क्या किया जाए। तो जब इंसान दिल में अल्लाह ताला को याद करने के ऊपर मशक करता है, मेहनत करता है, तो उसका भी नतीजा यही निकलता है कि उसका दिल नरम हो जाता है, यानी है कि उसके दिल के अंदर फिर सख्ती की कैफियत जो होती है वो नरमी की कैफियत से रिप्लेस हो जाती है। तवाजो और आजिजी, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के वास्ते तवाजो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका रुतबा बढ़ा देते हैं, और जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको जलील कर देते हैं। जैसे कि वह हदीस मुबारका के अल्फाज इस तरह से वो बनते हैं कि मन तवाज़ा लिल्लाही रफ़अहू अल्लाह, ठीक है, कि जिसने अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार किया अल्लाह ताला उसको उठाते हैं, रफ़अहू अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको उठा दिया, ठीक है, बुलंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिल्लाही का लफ्ज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना तवाजो तो फिर यानी जापानीज इतना तवाजो अख्तियार करते हैं, शायद ही कोई इतना तवाजो अख्तियार करे, वो तो आगे ही झुक जाते हैं आपके, राइट, रुकू में चले आते हैं, तो क्या वो रफाउल्लाहु वाला मामला होगा? ठीक है, कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, रफाउल्लाहु वाला मामला उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन उनके रफाउल्लाहु वाला मामला दुनियावी एतबार से, ठीक है, अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर बुलंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने तवाज़ो अख्तियार करी ना, तो अब लोगों में दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला उनको मुकाम अता कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक ईमान वाला जो है वो सिर्फ दुनियावी रिफत और बुलंदी तो नहीं चाहता ना, वो तो आखिरत की रिफत और बुलंदी चाहता है, और जमीनी में तौर पर दुनिया की भी मिल जाए तो वो भी दीन की खातिर ही चाहता है, ठीक है, कि भाई अगर अल्लाह ताला मुझे इज्जत अता फरमाएंगे लोगों में तो मैं दीन का काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकूंगा, और अगर जलील बन के रहूंगा तो फिर दीन का काम कैसे करूंगा, लोग मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ये नियत होती है मोमिन की, तवाजो बाय डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। तवाजो का मतलब इसके ऊपर एक शेर याद आता है हमारे हजरत अक्सर बयानात में पढ़ते हैं, तवाजो का तरीका सीख लो लोगों सुराही से, तवाज़ो का तरीका सीख लो लोगों सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी। सुन लिया, समझ लिया इसको, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी, ठीक है, यानी आप जब सुराही को उंडेलते हैं ना, ठीक है, तो उसको नीचा झुकाते हैं ना, तो जब आप उसको झुकाते हैं ना तभी उसके अंदर जो चाय होती है या कॉफी होती है या जो भी अच्छी चीज होती है वो बाहर निकल के दूसरों को मिलती है, और अगर ये सुराही झुकना ना ना सीखे, ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, इल्म है, मार्फत का खजाना है, जो कुछ भी है वो बस उसके अंदर ही रहेगा, दूसरों तक पहुंच नहीं सकेगा। तो एक तो ये तरीका माशाल्लाह शेर से मशाइख ने सिखाया, दूसरा ये कि तवाज़ो का मतलब यही होता है कि लोगों के साथ जो है वो नरमी और खुश अखलाकी के साथ पेश आना, और अपने आप अपनी बड़ाई को बयान ना करना, ठीक है, अपनी बड़ाई को बयान ना करना, और अगर कभी जरूरत पड़े तो यानी अपने आप को छोटा ही बना करके रखना लोगों के सामने, ठीक है, तो छोटा बना करके रखना इसको जो है वो दवा है, ठीक है। इज दैट आजिजी, जी हाँ, आजिजी भी यही चीज होती है, और तवाजो, तवाजो के अंदर वैसे वो भी मामला आते हैं कि जैसे मेहमान करते हैं ना, तो मेहमान की तवाजो का मतलब यही होता है कि जी मेहमान के सामने पेश करते हैं, जी आप ये भी ले लें, आप ये भी ले लें, और बड़े यानी इस तरह नहीं पेश करते गोया कि वो भी कहे कि यार ये मेरे साथ मतलब मेरी मेहमान नवाजी कर रहा है कि मुझे जो है वो जलील कर रहा है, राइट, तो ऐसे नहीं पेश करते, बल्कि झुक झुक करके पेश करते हैं, ठीक है, बड़ा यानी अपने आप को डाउन यानी, ठीक है। तो अब इसकी मिसालें तो खैर बहुत सारी मिल जाएंगी, ये इस वक्त तो जहन में ऐसी कोई एग्जांपल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह यकीन आप समझ गए होंगे बात। तो ये हो गया, लेकिन तवाज़ो और आजिज़ी इन्होंने यानी इस तरह से इस्तेमाल भी किया है यहाँ पर, सच बोलना और झूठ से बचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखाता है, और सच और नेकी दोनों जन्नत में ले जाते हैं, और झूठ बोलने से बचा करो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखाता है, और झूठ और बदी दोनों दोजख में ले जाते हैं, ठीक है, यानी नीयत वाली बात, ठीक है, कि सच बोलने के पाबंद क्यों रहो, जन्नत की खातिर, क्योंकि तुम जन्नत में पहुंचना चाहते हो, तो सच इसलिए नहीं बोलो कि तुम्हारी प्रोडक्ट की जो है वो यानी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारी जो है वो कोई इकोनॉमिक तुम्हारे एसेट्स बढ़ जाएंगे या इस तरह का फाइनेंशियल फायदा होगा, ठीक है, बल्कि जन्नत की खातिर, ठीक है, जैसे कि कल भी बात हुई थी कि एक्सप्लिसिटली मोमिन की नीयत जन्नत के लिए होती है, और झूठ से बचना भी क्यों, दोजख से बचने के खातिर, तो एक्सप्लिसिटली दोजख से बचने वाली नीयत होनी, ठीक है। और दूसरी इसके बारे में, सच के बारे में तो बहुत सारी हदीसें, हत्ता कि यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है, यानी दूसरे गुनाह में मुबतला हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता, ठीक है। और झूठे से मुराद जो है ना, ये नहीं है कि कभी एक दो बार झूठ बोल दिया, ठीक है, जो कि कहते हैं कि जी बशरी तकाजे की वजह से, खौफ की वजह से, किसी ऐसे मामले की वजह से झूठ बोल दिया, बल्कि आदतन झूठा होना, ठीक है, आदतन तो झूठे होते हैं ना, कि बस हर वक्त ही झूठ बोल रहे हैं, हत्ता के जरूरत नहीं भी थी फिर भी सच बोलने के बजाय झूठ बोलेंगे, हालांकि सच भी बोल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, उनकी सेहत खराब नहीं हो जाती, उनका बिजनेस लॉस नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसी आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की कि सच बोला ही नहीं जाता, यहां तक मामला हमने देखा, ठीक है, अल्लाह ताला हमें भी इसे महफूज रखे और हमेशा इससे बचाए। तो सच बोलना जो है ये हमारे दीन के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इसकी फिर अगर आप इसकी तौजीह वजह यानी हिकमत समझने की कोशिश करें, तो एक बात जहन में आती है कि ये जो दीन है, ठीक है, ये सारा का सारा एतमाद पर ही तो है, ठीक है, सब का सब एतमाद ही तो है, और क्या है ये, ठीक है, आप ना अल्लाह को कभी देख सकते हैं, ठीक है, ना आप फरिश्तों को देख सकते हैं, ठीक है, हत्ता के हम जैसे लोग तो रसूल को भी नहीं देख सकते, ठीक है, रसूल को भी तो सहाबा ने देखा, लेकिन सहाबा भी ने भी रसूल को कैसे कैसे देखा, ठीक है, वही पीछे बात हो चुकी है इसी क्लास के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम कोई हेवन एयरलाइन के अंदर बैठ के तो नहीं आए थे, ठीक है, कि इधर से भी फरिश्ते ने उठाया हुआ है, उधर से भी फरिश्ते ने उठाया हुआ है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला उन्होंने कबूल कर लिया ना, एतमाद ही तो किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, राइट, तो सारा का सारा एतमाद है, ठीक है। तो अगर कोई शख्स वो झूठ बोलता हो, ठीक है, और जैसे अगली हदीसों के अंदर भी आता है, वादे की 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 पास ना रखता हो, ठीक है, और अमानत में खयानत करता हो, तो ऐसे शख्स का तो एतमाद ही खत्म हो जाता है ना। तो जब मोमिन का एतमाद खत्म हो गया, तो फिर मोमिन जो है जिस मकसद से उसको इस दुनिया में भेजा गया, ठीक है, अल्लाह की इबादत करने के लिए तो भेजा गया, ठीक है, मैं यानी बनाया गया अल्लाह ताला की इबादत के लिए, लेकिन जो एक ईमान वाले का जब यानी वो वाकई ईमान वाला बन जाता है, तो फिर उसकी क्या ड्यूटी होती है इस दुनिया के अंदर, उसकी ड्यूटी जो है ना वो फिर होती है दीन को फैलाने की, ठीक है, ये दावत और तबलीग वाली ड्यूटी होती है मोमिन की, ठीक है, पहले तो जाहिर है अपने इसलाह करनी होती है, उन्हें इसलाह के बगैर दावत और तबलीग नहीं कर सकते, लेकिन जब इसलाह हो जाती है तो असल मकसद तो है इसका दावत और तबलीग करना, लेकिन अगर वो झूठ से ही बाहर नहीं निकल आए निकल पाएगा, वादा खिलाफी से ही बाहर नहीं निकल पाएगा, अमानत में खयानत से ही बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो कभी भी दावत और तबलीग का काम नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसका एतमाद खत्म हो चुका है, मजरूह हो चुका है, उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो सच जो है वो, और नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद करने की फिर यानी एक तो ये था कि भी कुरान का एजाज है, कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें थी कि जो कि इंसानों को झंझोड़ने के लिए थी, लेकिन बिल्कुल इब्तिदा में तो ये सारी तफसीलात नहीं आई थी ना, इब्तिदा में क्या था, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ट्रस्ट की बेसिस पर था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ट्रस्ट क्यों होता था, सादिक और अमीन होने की वजह से, ठीक है। रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जा रहा था, रास्ते में उसको कांटेदार टहनी पड़ी हुई मिली, उसने उसको रास्ते से हटा दिया, अल्लाह ताला ने इस अमल की बड़ी कदर की और उसको बख्श दिया, तशरीह इसे मालूम हुआ कि रास्ते में तकलीफ देह चीजें डालना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये रास्ते के हुकूक हमारे दीन ने बतलाए बाकायदा, ठीक है, हत्ता के अभी एक शेख का मैं बयान सुन रहा था कि बड़ी बहुत ही अच्छी बात करी उन्होंने कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया, पूरी जमीन मस्जिद है, आप कहीं भी खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, ईसाई तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, यहूदी ऐसे नहीं कर सकते, पूरी जमीन उनके लिए इबादतगाह नहीं है, हम हमारे लिए पूरी जमीन मस्जिद है, कहीं भी इबादत कर सकते हैं, ठीक है, फजीलत मुख्तलिफ है, जो खास मस्जिद हो जाए उसकी फजीलत मुख्तलिफ है, लेकिन कोई कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते के ऊपर नमाज ना पढ़ो, ठीक है, जहां पर लोगों का गुजर होता है, ठीक है, हदीस के अल्फाज भी बाकायदा शेख ने सुनाए थे कि रास्ते के ऊपर ना इबादत ना करो,
ठीक है, और रास्तों के ऊपर बैठो नहीं। फिर साहबा ने पूछा कि भाई ये तो मजबूरी है कि हमें यानी चीजें बेचने के लिए हमें इस तरह बैठना पड़ता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें रास्ते पे बैठना ही पड़े ना, तो रास्ते का हक अदा करो। ठीक है, और रास्ते का हक क्या होता है कि उसके ऊपर से कोई तकलीफदेह चीज है उसको हटा दो, लोगों के रास्ते में रुकावट ना बनो और इस तरह की चीजें। ठीक है, तो तकलीफदेह चीज हटा देना फिर अल्लाह ताला को पसंद है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि दूसरी बात ये होगी कि बाजाहिर जो है वो एक छोटा अमल किया लेकिन अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी। तो अल्लाह ताला फिर बहाने तलाश करता है, कोई ना कोई रीजन बनाता है ईमान वालों की बख्शिश करने के लिए। तो गुनाह तो हर इंसान से होते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा ईमान वाला हो, लेकिन गुनाह तो इंसान से हो जाते हैं। और इसके बारे में हम पहले बात भी कर चुके हैं कि अल्लाह ताला की जात ही इतनी बड़ी है, इतनी अजमत है अल्लाह ताला की, कि उसकी नाफरमानी तो बहुत बड़ी चीज है, चाहे छोटी क्यों ना हो, लेकिन जो भी नाफरमानी होगी वो इतना बड़ा मसला है कि हम यानी तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम तो अल्लाह ताला की अजमत का तस्वुर नहीं कर सकते, फिर अल्लाह ताला की इतनी अजमत के होने के साथ फिर उसकी नाफरमानी करें। ठीक है, तो गुनाह जो है वो मामूली चीज नहीं होती। दूसरी चीज ये कि खाली इंटेंशनल नाफरमानी के बजाय अगर हम अनइंटेंशनल भी गफलत ही का मामला रखते हैं, तो अल्लाह ताला की जात से तो गफलत ही जो है वो नाकाबिल कबूल किस्म की चीज होती है ना। तो अल्लाह ताला जो है ना वो है, बेसिकली ये सारा का सारा गुना है। ठीक है, गफलत भी गुना है, नाशुक्री का मामला ये तो बहुत बड़ा गुना है। ठीक है, अगरचे क्या वो शराब पीना नहीं है और ये नहीं है वो, इस तरह के जो गुना हम समझते हैं टेक्स्ट बुक गुना जो होते हैं, वो टेक्स्ट बुक गुना तो हम नहीं कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन नाशुक्री का गुना कर रहे होते हैं, नाकदरी का गुना कर रहे होते हैं और गफलत का गुना कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह की जात की अजमत को अगर सामने रखा जाए तो हर चीज ही गुना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये जो है ना बार बार बख्श दिया भाई, एक बहुत नेक आदमी था तो उसके कौन से गुना थे जो कि हर वक्त बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया। ठीक है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या कर फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे, गुनाहों को बख्श देंगे। भाई कहाँ से गुनाह आ रहे हैं, आप क्या बैठ करके करते रहते हैं ये लोग। ठीक है, कि अल्लाह ताला हर वक्त बख्शते रहते हैं, तो ये कोई टेक्स्ट बुक गुना नहीं कर रहे होते हैं जो नेक लोग होते हैं ना, लेकिन जो इस तरह की चीजें होती है वो हो रही होती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना फिर उनको भी बख्शते रहते हैं, माफ करते रहते हैं। वरना तो अल्लाह ताला की अजमत इतनी है कि मामूली सी गफलत को भी जो है ना अल्लाह ताला हमारे खिलाफ जो है बतौरे हुज्जत के इस्तेमाल करके हमें फिर जहन्नुम के अंदर फेंक सकते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला से कोई पूछ नहीं सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई अल्लाह ताला को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों किया। ठीक है, किसी की मजाल नहीं है कि अल्लाह को चैलेंज कर सके। अच्छा, तो अल्लाह ताला की बख्शिश इतनी बड़ी चीज है कि एक मोमिन जो होता है वो कभी मायूस नहीं होता। तो गुनाहों का तस्करा भी हम जो करते रहते हैं और बार बार डराने वाला मामला जो करते ही रहते हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि बस जब गुनाह करते हैं तो फिर इंसान जो है वो अपना नुकसान करता है और यानी कुछ ना कुछ उसको तकलीफ होती है, चाहे दुनिया में हो, चाहे आखिरत के दिन हो, चाहे कब्र में हो। ठीक है, चाहे जो है वो उसको जहन्नुम में ही कुछ अरसे के लिए जलना पड़े, लेकिन ये सारी चीज तकलीफें जो हैं वो गुनाह के सबब से होती हैं। ठीक है, इवन दो आखिर में बख्शिश हो भी जाए ईमान की वजह से, लेकिन हम तो नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे को एक छोटा सा भी कांटा लगे। ठीक है, नहीं चाहते ना। तो जो लोग ईमान वालों के लिए खैर ख्वाह होते हैं वो नहीं चाहते कि वो तकलीफ वाली जिंदगी गुजारें, बेबरकती वाली जिंदगी गुजारें, परेशानी वाली जिंदगी गुजारें, डिप्रेशन वाली जिंदगी गुजारें, एंगजाइटी वाली जिंदगी गुजारें और खास तौर पर बेइज्जती रुसवाई वाली जिंदगी गुजारें, जैसे कि हम सब के सब गुजार रहे हैं आज के दौर में। ठीक है, तो ये रुसवाई और बेइज्जती वाला मामला हमारे साथ क्यों हो रहा है? ठीक है, क्या अल्लाह ताला की रहमत खत्म हो गई है? हाँ, अल्लाह ताला की बख्शिश खत्म हो गई है? कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला की रहमत कभी खत्म नहीं हो सकती, हर चीज के ऊपर वसी है अल्लाह ताला की रहमत। तो हमारे साथ इतना रुसवाई और इतनी पिटाई और इतना बच्चों को नेजों के ऊपर उछालना, बच्चों के जो है वो माँ बाप के सामने जबा कर देना और कोई आगे से उसका पुरसाने हाल ना हो, इतनी रुसवाई, इतनी जिल्लत, यानी तस्वीर नहीं कर सकते हम इसकी। ठीक है, हम बगैर वीडियो देखे भी हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने वीडियो देखी उनका तो पता नहीं क्या असर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सब क्यों है? ये सब गुनाहों के वबाल है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो बार बार गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। भाई उसकी वजह ये नहीं होती कि अल्लाह की बख्शिश खत्म हो गई, रहमत खत्म हो गई, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि जितने गुनाह करेंगे ना, मैं या अमल सू युजा भी, उसकी जो है ना उसके बदले में ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो क्यों देखें हम ये सारी चीजें, क्यों हम इज्जत की जिंदगी ना गुजारें? क्योंकि तो गुनाहों को छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला इज्जत देंगे, इसी दुनिया में देंगे। तो अल्लाह ताला ने बख्शना तो एक कांटे को हटा देना रास्ते से, उसके ऊपर अल्लाह ताला बख्श देते हैं, उसका तो मसला नहीं है कोई भी, और कोई इनकार नहीं है इस बात से, इस हकीकत से। वादा और अमानत की पासदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, और जिसको अहद का ख्याल नहीं उसमें दीन नहीं। ठीक है, यानी इतने सख्त अल्फाज अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया ना कि ईमान नहीं और दीन नहीं, यानी बेदीन हो गया बंदा, बेईमान हो गया वो बंदा, काफिर हो गया नऊज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो बात यही है कि इतना बड़ा ये यानी वायोलेशन है। ठीक है, इतनी बड़ी वायोलेशन है, ट्रैफिक वायोलेशन होती है ना, एक छोटी सी होती है जी और एक होती है, इतनी बड़ी वायोलेशन, तो इतनी बड़ी वायोलेशन है कि डराने के लिए ना, रोकने की खातिर इतनी बड़ी बड़ी अल्फाज इस्तेमाल किए। उलमा का वैसे इसके ऊपर इत्तेफाक है, इजमा है कि ऐसा शख्स जो होता है उसका ईमान कमजोर हो जाता है, ज़यीफ हो जाता है, लेकिन वो काफिर नहीं हो जाता जब तक कि वो कुफर के सरीह अल्फाज इस्तेमाल न करे, कोई ऐसा अमल ना करे जिससे कि इंसान काफिर हो जाता। ठीक है, वही बात है, फिर यहाँ पर भी वही सच वाला मामला कि ऐसे शख्स के फिर एतमाद ही खत्म हो जाता है, बेतमाद हो जाता है वो शख्स। दुनिया की हिर्स ना रखना, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की हिर्स ना करने से दिल को सुकून हासिल होता है और बदन को भी आराम मिलता है। ठीक है, तो दिल की बेसुकूनी ही जो है वो दुनिया की हिर्स से होती है। अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, और जब दिल जो है वो अल्लाह की याद से गाफिल होकर के अल्लाह के बजाय अल्लाह के अलावा सब कुछ क्या है, गैरुल्लाह है, और इसी को दुनिया कहता है। ठीक है, हर चीज ही दुनिया है अल्लाह के अलावा, तो जब उसके अंदर इंसान लग जाता है तो फिर उसको सुकून मैसर नहीं होता, और इसका नतीजा जो है ना फिर उसके दिल के ऊपर भी नजर आना शुरू होता है, सॉरी उसके बदन के ऊपर भी नजर आना शुरू होता है। तो दिल की यानी दिल की बेसुकूनी ही को जो है वो हम टेंशन, एंग्जाइटी, सबसे डिप्रेशन वगैरह से करते हैं याद। ठीक है, तो ये सब जो है ना फिर क्या होते हैं कि इससे फिर जो है ना वो आपके जिसको हम जरा मेडिकल साइंस डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, ठीक है, वो बेहतर जानते हैं कि क्या होता है कि बॉडी सॉल्ट्स, ठीक है, केमिकल्स, केमिकल इम्बैलेंस, ये डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये केमिकल इम्बैलेंस होता है, फलानी चीज ज्यादा हो गई जिसको इतना होना चाहिए था वो उससे ज्यादा हो गया, या जिसकी मिकदार इतनी होनी चाहिए थी आपके ब्रेन के अंदर वो उतनी से कम हो गई। ठीक है, तो ये जो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो ठीक है, डॉक्टर साहब तो यही कहते हैं कि जी आप डिप्रेशन का शिकार इसलिए हैं क्योंकि आपका फलाना केमिकल जो है वो अप हो गया या वो डाउन हो गया। ठीक है, और ईमान वाला क्या कहता है, या ईमान वाला डॉक्टर क्या कहता है कि भाई ये डाउन हुआ क्यों, ये अप हुआ क्यों? ठीक है, व्हाट ट्रिगर्ड इट? ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना, कहते हैं जी आपके लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसा हुआ है, और हम भी यही कहते हैं जी लाइफ स्टाइल ही तो होता है गुनाहों वाला लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो गुनाह जो होता है ना वो फिर ट्रिगर कर रहे होते हैं, और इनकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है, यानी और यही मामला जो है होता है वो इंसान के बदन के अंदर भी हो रहा होता है, और यही मामला जो होता है वो फिर कायनात की दूसरी चीजों में भी हो रहा है। ये जो जलजले आते हैं ये भी हदीस में क्या आता है, गुनाहों की वजह से जलजले आते हैं। ठीक है, तो साइंसदान कहते हैं कि जी वो जो प्लेट्स होती हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो जलजले आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब तुम गुनाह करते हो ना तो अल्लाह ताला जो है ना वो तुम्हारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना उनको ऊपर नीचे कर देते हैं, जब ऊपर नीचे कर देते हैं तो जलजला आ जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ही करते हैं ना, फिर केमिकल डिसबैलेंस भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स का डिसबैलेंस भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ठीक है, तो बदन को भी आराम मिलता है जब अल्लाह ताला इस तरह, जब बंदा इस तरह नहीं करता तो वो फिर बीमारियों से और इस किस्म की चीज़ों से भी बच जाता है, और जो आनी होती हैं तकदीर की वजह से, तो फिर वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के ऊपर भी बीमारी आई थी, बुखार आया था। ठीक है, और नेक सालहीन के ऊपर भी बीमारियां आती हैं, लेकिन फिर वो उनके दर्जात बुलंद करने के लिए आती हैं, सजा के तौर पर नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बहुत सी बकरियों में दो खूनखवार भेड़िए छोड़ दिए जाएं जो उनको खूब चीर फाड़ खाएं, तो इतनी बर्बादी इन भेड़ियों से भी नहीं होती जितनी बर्बादी आदमी के दीन को इस बात से होती है कि माल की हिर्स करे और शोहरत को पसंद करे। ठीक है, यानी ये तो दो चीजें हैं, शोहरत को पसंद करना और माल की हिर्स करना, इससे इंसान का दीन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, दुनिया बर्बाद होना तो होती ही होती है, जिसको के इवन नॉन मुस्लिम्स इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, कि इंसान की दुनिया बर्बाद हो जाती है, सेहत खराब हो जाती है, फैमिली बर्बाद हो जाती है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ के बात कह रहे हैं कि इंसान का दीन भी बर्बाद, यानी दीनदार है और फिर अगर वो इस चक्कर में पड़ जाए ना दुनिया की हिर्स में, तो फिर उसका दीन खराब हो जाता है, और इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जितना कि भेड़िया जो है वो बकरियों को खराब कर सकता। और इसी को दूसरे अल्फाज में उस हदीस में बयान फरमाया कि हुब्बु दुनिया रासु कुल्ली खतियतें। ठीक है, हमने पढ़ी थी हदीस कि दुनिया की मोहब्बत ये तमाम बुराइयों की जड़ है। ठीक है, तो जब ये जड़ मौजूद होगी ना तो फिर तना जो है ना फिर खुद ब खुद उग आएगा, बस ऊपर से थोड़ी सी बारिश होने की देर होती है। ये जो खुद रो पौधे उग जाते हैं, ये क्यों उगते हैं? क्योंकि इनके जो बेस है, जो सीड्स होती हैं, जिस सीड के अंदर से ये रूट निकलती है ना, तो सीड जो है वो मौजूद होती है, बस ऊपर से बारिश होने की देर होती है। जैसी बारिश होती है उसके अंदर से फिर पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मामला ऐसे बंदे का होता है कि जिसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत मौजूद हो, जैसे ही उसको माहौल मिलता है फिर वो गुनाहों में पड़ जाता है। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी देर हो गई है और फिर इतना तो टाइम नहीं है कि पूरा ख़त्म कर सकें। किसी को कोई सवाल अगर नहीं है जैसे कि अब तक आपने तो नहीं किया, तो अगली क्लास पर ही रखें। ठीक है, साथ इसकी एक और भी दर्स क्लास होती है, उसके लिए तैयारी भी करनी होती है और भी कुछ काम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।